جماعت کے مسائل، مسائل الجماح، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اس کو ہم اس چپٹر میں دیکھیں گے. نماز با جماعت ادا کرنا واجب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس کوئی آدمی نہیں جو مجھے مسجد میں لائے. یہ کہہ کر اس نے نماز گھر پڑھنے کی رخصت چاہی. رسول اللہ نے اسے رخصت دے دی، لیکن جب وہ واپس ہوا تو اسے پھر بلایا اور پوچھا، کیا تو اذان سنتا ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا، پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھ. اسے مسلم نے روایت کیا. کچھ کہنے کی ضرورت ہے اس پہ؟ نابینا شخص ہے اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اذان کی آواز تیرے گھر تک پہنچتی ہے، یعنی گھر قریب ہی ہوگا تبھی تو اذان کی آواز پہنچتی ہے، تو پھر گھر میں نہیں تم آ پڑھ سکتے بلکہ مسجد میں آؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر آنکھوں والوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ نماز فجر اور نماز عشاء کی جماعت میں شامل نہ ہونا نفاق کی علامت ہے. با جماعت نماز ادا نہ کرنے والوں کے گھروں کو رسول اللہ نے جلانے کا ارادہ فرمایا. با جماعت نماز ادا کرنے کا ثواب تنہا نماز ادا کرنے کے مقابلے میں 27 یعنی 27 درجے زیادہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اکیلی نماز کے مقابلے میں با جماعت نماز 27 درجے افضل ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہم کتنا اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم ایک چیز خریدیں تو ایک فری ملے، بائی ون گیٹ ون فری، اور اگر بائی ون گیٹ ٹو فری تو پھر تو ڈبل خرید لیتے ہیں، ضرورت سے زائد خرید لیتے ہیں، اور یہاں بائی ون گیٹ 26 فری، تو پھر کون ہے جو چھوڑے گا؟ وہی چھوڑے گا جس کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ میں نے بہت زیادہ نیکیاں جمع کر لی ہیں اور میرے نام جنت کے پیپر ایشو ہو چکے ہیں اور بس اب مجھے کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. اور ایسی احادیث رغبت کے لیے سنوانی چاہیے. اور آپ دیکھیے یہ معروف بات ہے، سب کو ہی پتہ ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ شیطان کتنا ظالم ہے، نیکیوں کے معاملے میں انسان کو کتنا قناعت پسند کر دیتا ہے، تھوڑے پہ بھی راضی ہو جائے، اور دنیا کے مال کے لیے ہمیشہ انسان بھاگنے کو پسند کرتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں مزید سے مزید کماؤں. تو جس کو اپنی آخرت کا اکاؤنٹ نظر آئے گا پھر وہ تو ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے درجے کو ضائع نہیں کرے گا. عورتیں مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں تو انہیں روکنا نہیں چاہیے، البتہ گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے افضل ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، البتہ ان کے گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. جس گھر میں جماعت کرانے والی خاتون موجود ہو، اس گھر کی خواتین کو با جماعت نماز ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت ام ورقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر والوں کی امامت کا حکم دیا تھا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. گھر والوں سے مراد گھر کی عورتیں ہیں، نہ کہ مرد، کیونکہ مرد تو اس دور میں تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ دونوں تینوں روایات اگر جمع کریں تو بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی طرح عورت کو 5 وقت مسجد میں نماز ادا کرنے پہ مجبور نہیں کیا، لازم نہیں کیا، کیونکہ عورتیں اکیلی باہر جانے کے لیے بعض دفعہ جھجکتی ہیں اور ان کے لیے کئی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ عورت کا دائرہ کار چونکہ گھر میں ہوتا ہے، تو گھر سے 5 دفعہ دن میں نکلنا، بچوں کو چھوڑنا، گھر کو بند کرنا مشکل ہوتا. مرد عموماً باہر ہی ہوتے ہیں، تو جب باہر رہتے ہوئے 3-4 نمازیں وہ باہر کی مسجد میں اور 5ویں نماز اگر گھر کے قریب کی مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح فجر کی نماز اپنے گھر کے قریب پڑھتے ہیں، تو اس سے ایک تو ان کی صحت پہ اچھا اثر پڑتا ہے، تعلقات بڑھتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے اسلام کی بنیاد پہ دوستیاں ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو دوسری بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اس چیز کی لگن بڑھ جاتی ہے کہ میں مرد ہوں اور مجھے وہ ساری ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں جو گھر سے باہر سے متعلق ہیں. اس کے برعکس عورتوں کو کہا کہ فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت پڑھتی ہے تو جتنا ثواب مرد کو ہے اتنا ہی عورت کو ہے. اگر ایک ہی 27 نمازیں مرد کی ہوتی ہیں تو یہ نہیں کہ عورت کی جو ہیں وہ آدھی ہوں، اسے اس کی بھی اتنی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ عورت نہ پڑھے تو گناہگار نہیں، جواب دے نہیں، مرد جماعت سے نہیں پڑھے گا تو پوچھا جائے گا کہ وجہ کیا تھی. ٹھیک ہے، फिर अगली चीज़ इसमें आप देखिए कि जिस घर में जमात कराने वाली खातून मौजूद है इससे क्या मुराद है। जिसको सही नमाज़ पढ़नी आती हो, कुछ कुरान का हिस्सा आता हो, यम्मे वरक़ा जो थी हाफिज़ा भी थी और इसलिए इनको अल्लाह के नबी ने कहा कि आप घर में नमाज़ पढ़ाएं, तो अब आप कहें कि पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ करें तो फिर नमाज़ पढ़ाएं, नहीं, बस अगर आप घर में नमाज़ पढ़ाना चाहती हैं शौक़ से पढ़ाएं, छोटी छोटी सूरतें सबको ही आती हैं, अकेले पढ़ें या जमात में पढ़ें, बहरहाल नमाज में सूरतें तो मुख्तलिफ ही पढ़नी चाहिए। तो लेकिन यह कि इसमें अमल की बात है कि हम खवातीन घर में अमूमन एक से ज़ायद ही होती है ना, माँ बेटी कभी होती हैं, कभी बहनें होती हैं, कभी नन भाभी हो सकती हैं, सास बहू हैं, दोनों औरतें मिल जाएं, और औरत कैसे करेगी ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब औरतों की नमाज के मसाइल आएंगे कि फ़र्क क्या है। इशारतन ज़िक्र कर देती हूँ कि मर्द जब जमात कराते हैं तो वो आगे सबसे बाहर रह के खड़े होते हैं आम हालात में। हाँ, दो मर्द होंगे तो वो दोनों बराबर ही खड़े होंगे, लेकिन औरत जो है वो सफ के अंदर रह के नमाज करती है, और उसके दाएं और बाएं तरफ लोग होंगे, दाएं तरफ ज़्यादा लोग होने चाहिए, बाएं तरफ दूसरे, और औरत मर्दों को जमात नहीं करा सकती। आज के दौर के फितनों में अब ये भी फितना उठ गया जो पिछली 14 सदियों में कभी नहीं सुना था कि अब औरतें भी जमात कराने लगीं, और आप ऐसी खबरें सुनते ही रहते होंगे कि ना सिर्फ औरतों ने नमाज कराई बल्कि अजान भी दी और उनके हुलिये हाल जो थे वो देखने के काबिल थे, और मस्जिद में जगह ना मिली तो चर्च में जगह मिली। अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको, हम न जाने कौन सा इस्लाम दूसरों को दिखाना चाहते हैं। पहली जमात के बाद इस वक्त की दूसरी जमात इसी मस्जिद में कराना जायज़ है। दो आदमियों को भी नमाज व जमात अदा करनी चाहिए। हज़रत अबू सईद रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ, इस वक्त रसूलुल्लाह सहाबे कराम को नमाज पढ़ा चुके थे। आपने सहाबे कराम से दरियाफ्त फरमाया, कौन है, इस शख्स पर सदका करे। अंदाज़ देखिएगा कितना रग़बत दिलाने वाला अंदाज़ है। और इसके साथ नमाज पढ़े। एक शख्स खड़ा हुआ और इसने आने वाले के साथ मिलकर नमाज पढ़ी। इसे अहमद अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। ये है दीन का हुसन। किसी वजह से कोई नमाज से लेट हो गया, मस्जिद में आया, पहली बात तो ये कि अगर जमात हो रही थी तो उसको वहीं साथ मिल जाना चाहिए। ये भी आगे हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला कि जमात हो रही है और बीच में कैसे मिले, लेकिन नमाज पूरी हो गई, किसी वजह से भी बेचारा नहीं पढ़ सका, उसको गिल्ट होगा ना, बजाय इसके कि आप डांटते, वक्त पे आते ही नहीं, पता नहीं क्या है, शौक ही नहीं है, घरों से निकलने को दिल ही नहीं चाहता। नहीं, कितने प्यारे अंदाज से कहा कि कोई इसके साथ सदका करता है। मुराद क्या था कि ये बेचारा अभी अकेला नमाज पढ़ेगा तो एक नमाज होगी, तो कोई इसकी जमात करवा दे ताकि इसको 27 का अजर मिले। इससे पता चलता है ना कि नेकियों का भी सदका होता है, सिर्फ माल ही सदके में नहीं दिया जाता। और सहाबा कराम में से जो पढ़ चुके थे उन्होंने में से एक ने कहा मैं कराता हूँ, तो इस तरह दोनों ने जमात की। इस सूरत में होता क्या कि जिसने अभी तक नहीं पढ़ी होती ना उसकी फ़र्ज़ हो जाती है, और जिसने पहले फ़र्ज़ जमात पढ़ चुका है उसकी ये नफिल हो जाती है। आप सोचें कि जिस माशरे में और जिन मस्जिदों में ये कल्चर आम होगा वहाँ मोहब्बत बढ़ेगी कि नफ़रत, बुग़्ज़ बढ़ेगा कि अदावत, कि क्या होगा। झगड़े करने की बजाय अगर इंसान अमली चीज़ों को सामने लाए तो फ़ायदा होगा। और इससे ये भी पता चला कि एक ही मस्जिद में अब दो जमातें हो रही हैं। हाँ, फ़र्क क्या है कि पहली जो वक्त की जमात है उसको अनाउंस किया जाएगा, उसके लिए अजान भी होगी, उसके लिए इकामत भी होगी, लेकिन इस तरह अगर बाद में एक छोटे ग्रुप में जमात होती है तो वो ना माइक पे होगी कि बिल्कुल उसी प्रोटोकॉल से की जाए कि लोग फिर आदत ही बना लें कि चलो भी पहली में नहीं जाएंगे तो दूसरी में होंगे। और दूसरी बात है, मुगालता लग जाएगा लोगों को कि ये असल नमाज है कि दूसरी है, तो इसको बस एक छोटे से ग्रुप में मस्जिद में पीछे किसी सफ में एक दो लोग हैं, चार हैं, छः, वो कर लें, ठीक है। तो इसको लेकिन बिल्कुल पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान जो होगा कि जो देर से आते हैं वो और देर से आएंगे कि हमें दूसरी मिलेगी। और कभी ऐसा करना चाहिए कभी नहीं, क्योंकि अगर हमेशा ही ऐसा होगा तो फिर मारूफ हो जाएगा कि इस मस्जिद में दो जमातें होती हैं। गैर मामूली सर्दी और बारिश जमात के वजूब को साकित कर देते हैं, यानी आम हालात में तो वाजिब है, रिकमेंडेड है, हाँ, लेकिन जब सर्दी बहुत हो या बारिश हो जिसमें मस्जिद में जाना या वहाँ ठहरना मुश्किल हो तो फिर ये वाजिब जो है ये नहीं रहती। हज़रत इब्ने उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी और बारिश की रात मुअज्जिन को हुक्म देते और मुअज्जिन नबी अकरम के हुक्म के मुताबिक अजान में इजाफा करता, और उसमें क्या अल्फाज बोलता, लोगों अपने घरों में नमाज पढ़ लो। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया। ये कौन सी सर्दी और कौन सी बारिश है जिसमें नमाज के लिए आना मुश्किल है, लेकिन इसी पे क्यास करते हुए हर वो मौसम जिसके अंदर इंसान की जान के जाने का खतरा हो, हादसे का खतरा हो, बीमारी का खतरा हो, तो फिर जो बंदा हर रोज़ जो मस्जिद में जाके पढ़ता है, तो एक दिन अगर वो घर में जमात से पढ़ ले या घर वालों के साथ मिल के पढ़ ले, तो इंशाल्लाह ताला उसको हर दिन की नमाज की तरह अजर मिलेगा। इसे आप देखिए कि दीन कितना फ्लेक्सिबल है। लेकिन अब इस फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब नहीं कि लोग ये कहें कि देखो ना, अल्लाह के नबी ने तो खुद कहा था लोग अपने घर में पढ़ लो, तो फिर घर में ही पढ़ लेते हैं। यानी जब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें देखी जाती है ना, तो फिर इस तरह की बात है। सिर्फ ये एक हदीस कोई कहीं देख ले और वो कह सकता है ना कि देखें जी कोई नहीं बारिश हो रही थी, वो क्या था, हल्की फुल्की बारिश थी। क्या किया जाए, कैसे पता चला जाए कि आज ये बारिश में मस्जिद में पढ़ेंगे या घर में? आप ये देख लें कि क्या आप उस बारिश में कहीं और निकलते हैं। अगर उस बारिश ने आपको घरों में बंद कर दिया है, आप ना स्कूलों में जा रहे हैं, ना जॉब्स पे जा रहे हैं, ना आपकी पार्टीज हो रही हैं, ना शादी हो रही है, ना फंक्शन हो रहा है, तो फिर आप मस्जिद भी ना जाएं। लेकिन अगर बाकी जगह जाते हैं तो फिर ठीक है। भूख और रफ़ा हाजत जमात के वजूब को साकित कर देते हैं। यानी जब भूख लगी हो या टॉयलेट में जाने की हाजत हो, तो उस वक़्त फिर जमात से नमाज अगर ना कोई पढ़ सके इन दो मजबूरियों से, तो फिर उसकी भी रुख्सत है। कैसे? हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, खाने की मौजूदगी और रफ़ हाजत के वक्त नमाज व जमात वाजिब नहीं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। तो ये तो बहुत अच्छी रुख्सत मिल गई फिर, जब नमाज का वक्त हो तब खाना लगवा दें, हाँ, और जब नमाज का वक्त हो तो टॉयलेट में चले जाएं और इतनी देर अंदर लगा के आएं कि जमात का वक्त चला जाए, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए कि जिसको ये पता चलेगा ना कि ये मेरी नेकी कम हो रही है, वो वक्त से पहले ही खा लेगा और वो वक्त से पहले ही अपने आप को ज़रूरियात से फारग करेगा। अगर पूरी बात को जितनी भी हमने इसमें पढ़ी इस पर अगर हम एक नज़र डालें ना, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती और गुस्सा और डरा धमका के कोई बात कराने की बजाय अगर मर्दों को रग़बत दिलाई जाए, और ये रग़बत बड़े होने पे दिलाने की बजाय अगर छोटे बच्चे ही जो 6-7 साल के 8 साल के घरों में पलते हैं उनको ये शौक़ दिला दिया जाए, तो कोई नुकसान तो नहीं अपना करना चाहता। और बच्चे तो बड़े हरीस होते हैं मनी के बारे में, और लालच उनके दिलों में होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ कमा लें। तो लिहाजा इसके लिए घर की ख्वातीन का भी बड़ा गहरा रोल होता है कि वो उस वक्तों में मर्दों को फारिग कर दें, किसी काम में ना उलझाएं, वक्त से पहले उनको एहसास दिलाना शुरू कर दें। ये जुमले अक्सर आप बोल सकते हैं, चलें खाना खा लेते हैं फिर जमात का वक्त होने वाला है, चलें ऐसा करते हैं कि ये काम कर लें फिर आपने मस्जिद में भी तो जाना है। यानी डायरेक्ट ये कहना मस्जिद में जाएँ, घर ना पढ़ें, हराम है, दुरुस्त नहीं, ये कुछ कहने के बजाय टोन भी चेंज कर लें और अल्फाज भी थोड़े से नरम कर लें। और अगर किसी दिन कोई ना जाए तो आप एक अफसोस करते हुए, एक मासूम सी शक्ल बनाते हुए कह सकते हैं कि मुझे अफसोस हो रहा है कि आपकी नेकी में कमी हो गई। यानी किसी का माली नुकसान होता है तो हम ताज़ियत करते हैं ना, तो इस तरह अगर हम नेकियों में कमी पे लोगों से ताज़ियत करेंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि उनके दिलों में इस चीज़ की रग़बत बढ़ेगी।